तब तब कर निखरेगा जीवन, तब कर बनते देव महान, तब से मिलता जीवन का सुख, तब से मिलता जीवन दान। तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता, तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता, तपस्या से जीवन में आती है मधुरता, तपस्या से जीवन में आती है मधुरता, तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता।
ओम शांति। यज्ञ के बहुमूल्य रत्न आदरणीय राजू भाई जी हम सभी के बीच में उपस्थित हैं। हम सब एक हाथ की ताली से भाई जी का स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। राजू भाई जी यज्ञ की एक ऐसी सौभाग्यवान आत्मा है कि जिनको सभी दादियों के बहुत ही समीप रहने का भाग्य प्राप्त हुआ है। दीदी मनमोहिनी जी, दादी प्रकाशमणि जी, दादी जानकी जी, क्यों? आप सभी को दिल में सवाल उठता होगा, क्यों? जो भी दादियों के पास पत्र आते हैं वो पत्रों को उत्तर देना सभी को। दादियां जो पत्र हमें पहुंचाती हैं, लिखती हैं, वो बैठ करके लिखने का काम करना, ये सब राजू भाई करते हैं। तो रोज रोज दादियों से मिलना जुलना आपका होता रहता है। अपनी विनम्रता, निरहंकारिता, सच्चाई सफाई के इन सभी सद्गुणों के कारण आपने बड़ों की दिल को जीता है। हम सभी मुरली में जो प्रश्न उत्तर सार धारणा या तो पत्र पुष्प के अंदर भी जो अव्यक्त इशारे आदि पढ़ते हैं वो सब राजू भाई मुरली से निकालते हैं और सारे विश्व में पहुंचाते हैं। मुरलियों का सिंधी में से हिंदी में अनुवाद करने का भाग्य भी बाबा ने आपको दिया है। आप ग्राम विकास प्रभाग के हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर हैं। आज हम सभी को आपका लाभ मिलेगा इस विषय पर, आत्मशुद्धि का एकमात्र आधार गहन तपस्या। आदरणीय राजू भाई जी।
ओम शांति। मधुबन के इस तपस्या भूमि में गहन तपस्या करने का सौभाग्य आप सबको भी मिला। इतने सुंदर वातावरण में जहां साकार रूप में ब्रह्मा बाबा ने तपस्या की, हमारी दादियों ने तपस्या की, ऐसी तपस्या भूमि में आप सब दो तीन दिन से बहुत अच्छा अनुभव कर रहे हैं। हम सब तपस्या के गुहे रहस्यों को जानते हैं। बाबा ने तो हमें सहज योगी, स्वतः योगी, कर्म योगी का टाइटल दिया है, लेकिन योग जब तपस्या का स्वरूप लेता है तो नेचुरल जो हमारे कई ऐसे संस्कार हैं जिनमें अशुद्धता अभी तक छिपी हुई है वो समाप्त होती है। वैसे तो कोई प्रश्न पूछते हैं कि योग सहज हो जाए उसकी विधि क्या है, तो हम कहते हैं जितना आत्मा शुद्ध बनती जाती है, पवित्र होती जाती है, उतना वो योग सहज हो जाता है। फिर प्रश्न करते हैं, अगर योग पवित्रता का आधार से सहज है तो योग से क्या प्राप्ति होगी? योग से आत्मा पावन बनती है, पवित्र बनती है, और योग के लिए भी पवित्रता चाहिए। ये दो बातें आती हैं। जब आत्मा शुद्ध होती जाती है, पवित्र होती जाती है, तो उसका योग बहुत सहज होता जाता है। और जब योग सहज हो जाता है, स्वतः हो जाता है, तो आत्मा पवित्र बनती जाती है। इस प्रश्न का उत्तर क्या है? पहली पवित्रता क्या है और बाद वाली पवित्रता क्या है? योग लगाने के लिए हमारा चिंतन, हमारा व्यवहार, हमारा खान पान, हमारा आचरण बहुत पवित्र शुद्ध चाहिए। और जितना हमारे अंदर वो शुद्धता आती जाती है, जितना हम नियम मर्यादाओं का पालन करते हैं, परहेज से चलते हैं, उतना योग सहज हो जाता है। और जब योग सहज लग जाता है, शक्तिशाली हो जाता है, तो जो छिपे हुए कड़े संस्कार हैं अपवित्रता के, उन संस्कारों में परिवर्तन आता है, दिव्यता आती जाती है। इसलिए आत्म शुद्धि का आधार गहन तपस्या एकमात्र साधन है। और तपस्या के लिए स्थान अथवा आसन की बहुत जरूरत होती है। कोई भी तपस्वी के लिए आप देखें, कोई न कोई अच्छा स्थान चुनते हैं और उसके लिए कोई अच्छे आसन पर बैठ करके तपस्या करते हैं। हम सबको भी बाबा ने बहुत से आसन दिए हैं, और अगर उन आसन पर, उस स्थान पर बैठ करके कोई योग करता है तो तपस्या का स्वरूप बन जाता है, माना वो याद शक्तिशाली हो जाती है। तपस्या तो हम हठ क्रियाओं वाली नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं कर रहे हैं कि हम एक टांग पर खड़े हो गए हैं, जल में खड़े हो गए हैं, कोई शीर्ष आसन कर रहे हैं। हठ योगी जो करते हैं उसको भी तपस्या कहते हैं। ये तपस्या है इनकी जो एक टांग पर इतने समय से खड़े हैं। आप देखो जाके मेलों में, कुंभ मेले में कितने सन्यासी, कोई कांटों पर लेटा हुआ था, कोई झाड़ पर लटका हुआ था, कोई एक टांग पर खड़ा हुआ था, ये तपस्या कर रहा था। बाबा ने हम सबको ऐसी तपस्या तो सिखाई नहीं है। हमारी तपस्या है हमारे नेचुरल बाबा की याद बनी रहे, एक बाबा दूसरा न कोई, ये तपस्या है। एक वृत्ता, एक वृत्ति में केवल एक बाबा रहे, दूसरा कोई ना आए। जो संकल्प करें उसमें इतनी दृढ़ता हो, कुछ भी हो जाए हम अब संकल्प से हिलेंगे नहीं, ये तपस्या है। तो ऐसी तपस्या जो हम चलते फिरते कर्म करते व्यवहार में आते भी कर रहे हैं, इसलिए कहते हैं इनका बड़ा त्याग है, इनकी बड़ी तपस्या है। नेचुरल लोगों को लगता है कि देखो कलयुग के संसार में जहां पर इतने भभके हैं, इतनी माया की पॉम्प है, इतना फुल फोर्स चारों तरफ से, ऐसे वातावरण में रहते हुए भी ये बहुत अच्छी निर्लिप्त अवस्था में रहते हैं, इनके ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं आता, इसलिए मानते हैं ये तपस्वी इनकी जीवन है। बाबा ने हम सबको सबसे पहला जो स्थान दिया, तपस्या का आसन दिया है, वो है भ्रकुटी की गुफा। जब हम योग में बैठते हैं, बाबा की याद में बैठते हैं, तो सबसे अच्छी विधि है कि हम इस गुफा में बैठ करके अपने स्वस्वरूप को देखते हैं, इस देह भान से डिटैच हो जाते हैं, क्योंकि अशुद्धि का मूल कारण है बॉडी कॉन्शियस। आत्मा में जो अशुद्धि आई, हम सब इस सृष्टि चक्र की नॉलेज को जानते हैं कि सत्ययुग और त्रेता के अंदर जब तक सोल कॉन्शियस स्टेज थी, आत्म अभिमानी स्थिति थी, तब तक विकारों की अशुद्धि इसमें प्रवेश नहीं हुई। लेकिन देह के साथ पार्ट बजाते बजाते धीरे धीरे प्योरिटी की कलाएं कम होती गई, अशुद्धता उसमें प्रवेश होती गई। और अशुद्धता यही आई कि धीरे धीरे बॉडी कॉन्शियस देह अभिमान बढ़ता गया। लेकिन जब द्वापर युग आया और अपने भान को, अपने स्व स्थिति को आत्मा भूली, बॉडी कॉन्शियस में आ गई, तो सब प्रकार की अशुद्धियां, सब प्रकार के विकार प्रवेश हो गए। और वो प्रवेश होते होते आज एकदम तमोगुणी स्टेज पर हम सब पहुंच गए। सोचना, बोलना, देखना, खाना, पीना, सब में अशुद्धता भर गई। जो कुछ हम कर रहे हैं कोई न कोई विकार के अधीन होकर के कर रहे हैं। इसलिए इस अशुद्धता को समाप्त करने के लिए पुनः तपस्या की जरूरत है। और वो तपस्या के लिए पहला आसन जिससे देह भान समाप्त हो जाए, एक नेचुरल आत्म अभिमानी स्थिति बन जाए कि मैं आत्मा इस भ्रकुटी आसन पर विराजमान हूं, अपने लाइट माइट स्वरूप को देखो और देखकर इस भान से डिटैच हो जाओ, बाबा के पास पहुंच जाओगे, योग लग जाएगा, तपस्वी जीवन बन जाएगी। फिर ये कर्म इंद्रियों की चंचलता अपने आप समाप्त हो जाएगी, मन का भटकना भी बंद हो जाएगा। लेकिन इसके लिए आत्म अभिमानी स्थिति में रहने की तपस्या करनी पड़ेगी। आंख खुलते ही इस आसन पर बैठने का अभ्यास हो जाए कि भ्रकुटी हमारा आसन है और इस आसन पर बैठ करके मुझे इन कर्मचारियों को, कर्म इंद्रियों को आर्डर प्रमाण चलाना है। कोई भी कर्मेंद्री आत्मा को धोखा नहीं दे सकते। दूसरा आसन बाबा ने हम सबको कर्म क्षेत्र पर भेजा, प्रवृत्ति के अंदर भेजा और आसन दिया कमल आसन। ये कमल आसन वैसे तो कोई भी कमल के फूल के ऊपर जोर वजन नहीं रखा जा सकता है, अगर उसके ऊपर उंगली भी रख दो तो कीचड़ में चला जाएगा। लेकिन योगी के लिए दिखाते हैं कि वो कमल आसन पर बैठ कर तपस्या करता है। ये यादगार आपने देखा होगा, तपस्वियों को इस आसन पर बिठाते हैं, कमल आसन, कमल का पत्ता है और उसके ऊपर वो बैठा हुआ है। बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि बच्चे जो भी तुम्हारे ऊपर बोझ हैं, जवाबदारियां हैं, जिसको तुमने अपना समझा है, ये सब समर्पित करके बहुत डबल लाइट स्थिति में रहो। जितना जो डबल लाइट स्वरूप में रहता है, हल्का रहता है, वो इस आसन पर बैठ सकता है, कमल आसन पर। और कमल आसन पर बैठते ही माना सब जवाबदारियां बाबा को समर्पित करते ही जब हल्का हो जाते हैं, बहुत लाइट हो जाते हैं, तो अपने आप योग सहज हो जाता, बाबा के साथ एकाग्र हो जाते, स्थिर हो जाते। तीसरा एक बहुत सुंदर आसन है जो आप लोगों ने देखा होगा, कई जिन्होंने तपस्या के द्वारा सिद्धि प्राप्त की वो कोई न कोई अच्छे वृक्ष के नीचे बैठ करके करते, तने में। और बाबा ने हम सबको कल्प वृक्ष के जड़ में, तनों में बिठाया है। हमारा चित्र भी ऐसा बना हुआ है, पूरा वृक्ष ऊपर है, वैरायटी वृक्ष है, और नीचे तने के अंदर मम्मा, बाबा, दादियां तपस्या कर रही हैं। अगर हम सभी नॉलेज फुल स्टेज में रहते हैं, ये स्टेज है नॉलेज फुल स्टेज, वृक्ष के नीचे कोई स्थूल में जाकर के हम नहीं बैठे हैं, लेकिन एक पूरे वृक्ष का ज्ञान है, उसके आदि को, मध्य को, अंत को, हर आत्मा के वैरायटी रूप को, उसके पार्ट को, उसके आदि मध्य अंत को, उसकी सत्वगुणी स्टेज, रजोगुणी स्टेज, तमोगुणी स्टेज, कैसे वृक्ष की वृद्धि हुई, कैसे इसका भी अंत समय है नजदीक, पूरा ज्ञान। जो ज्ञान स्वरूप आत्माएं हैं, पूरे वृक्ष को जो जानती हैं, हर आत्मा के पार्ट को, वो तपस्वी बन सकती हैं। अगर किसी के पार्ट को देख करके मन के अंदर क्यों, क्या, कैसे, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, किसी भी प्रकार के उलझन के प्रश्न मन में उठते हैं, माना वो वृक्ष का नॉलेज नहीं रख रहा है। ये वैरायटी वृक्ष है, वैरायटी संस्कार है, वैरायटी आत्माएं हैं, हर धर्म अलग है, हर भाषा अलग है, हर एक का फेस अलग है, हर एक का पार्ट अलग है, एक का पार्ट दूसरे से नहीं मिल सकता है। ये बहुत ऊंची नॉलेज जिसके चिंतन में रहती है बहुत सहज तपस्या कर सकता है, नहीं तो प्रश्नों में उलझने वाली आत्मा क्यों करता, कैसे करता, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ, अनेक प्रश्नों के अंदर रहने वाला तपस्वी नहीं बन सकता। इसलिए कल्प वृक्ष के नीचे तपस्वी मूरत बन करके बैठो। और इसके साथ साथ एक बहुत सुंदर आसन है, वो है साक्षी दृष्टा स्थिति का आसन, साक्षीपन की स्थिति। कर्म करने की छुट्टी दी है बाबा ने, कर्म क्षेत्र पर हम सब आए हैं, कर्म संन्यास तो है ही नहीं। बाबा ने कर्म संन्यास शब्द को उड़ा दिया है, ये शब्द ही गलत है। सन्यासी जो कहते हैं मैं कर्म सन्यासी हूँ, वो भी कर्म के बिना नहीं रह सकते। भले भोजन नहीं बनाते हैं, भोजन मांग के या भिक्षा का लेके खा लेते हैं, लेकिन चलना फिरना, सांस लेना, देखना सुनना, ये सब कर्म ही है। कर्म के बिना कोई नहीं रह सकता। तो इस कर्म क्षेत्र पर हर आत्मा कर्म कर रही है, कर्म करते हुए हर एक के कर्म को हम समझ करके चलें, कर्मों की गुहे गति है, और अपनी स्टेज को बिल्कुल साक्षी बना लें। अगर हम निर्लिप्त होना चाहते हैं, इसे छूटना चाहते हैं, तो छोड़ करके नहीं जाना है, लेकिन सबके बीच में रह करके सबके पार्ट को देखें, और देख करके जैसे नाटक के अंदर कोई बहुत अच्छे से अच्छा हीरो पार्ट बजाने वाला एक्टर होता है तो उसकी भी वाह वाह होती है, और कोई को ऐसा विलियन का पार्ट मिलता है जो उसके अंदर मारपीट करने का पार्ट होता है, हिंसा का पार्ट होता है, तो जब हम पार्ट के रूप में पार्टधारी को देखते हैं तो कहते हैं वाह वाह वाह, इसने बहुत अच्छा, ये भी पार्ट बहुत अच्छा बजाया। उसके पार्ट को देख के नहीं कहते ऐसा ये क्यों कर रहा नाटक के अंदर, इसको ये नहीं करना चाहिए, समझते हैं ये जो पार्ट प्ले कर रहा है इसका ही रोल है। तो ड्रामा के अंदर इस बात को अगर कोई समझ करके चलता है कि ये जो कुछ कर रहा है ये इसका रोल है, यही इसका पार्ट है, उसमें मुझे अपने आप को डिस्टर्ब नहीं करना है। मैं थोड़ी सी बात में परिवार के बीच में कोई बात आ जाती है, कोई समस्या आ जाती है, तो क्या कहते हैं मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मैंने ऐसा क्या कर्म किया है जो मुझे ये सब मिले हैं, ऐसे बहुत सारे प्रश्नों के अंदर उलझ जाती है आत्मा। तपस्वी जीवन के लिए आवश्यक है जितना हो सके सबके साथ रहो, पार्ट बजाओ, हर एक के पार्ट को देखो, और साक्षी दृष्टा स्थिति के आसन पर रहो। और पांचवा जो बहुत शक्तिशाली स्थान है, ऊंची स्थिति, वो मूल वतन की स्थिति है, जिसके अंदर कोई संकल्पों की हलचल नहीं है। उस स्थिति में बैठ करके जैसे बीज के साथ बैठ करके ऊपर से पूरे ग्लोब को, पूरे विश्व को, पूरे वृक्ष को लाइट दे रहे हैं। अभ्यास करेंगे तो गहन तपस्या के लिए ये पांचों स्थान कहें, पांचों स्थितियां कहें, पांचों आसन आवश्यक है। और जो प्रैक्टिकल पूरे कर्म क्षेत्र पर कर्म करते हुए इन बातों पर ध्यान देता है वो सहज तपस्वी स्वरूप बन जाता है। उसको योग लगाने की, तपस्या करने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती। और आत्मा के अंदर जो अशुद्धियां आई हैं, उन अशुद्धियों पर ध्यान दें, क्योंकि हम सब पार्ट प्ले करते करते देह अभिमान के इतने अधीन हो गए, उसमें सबसे ज्यादा पहले मन अशुद्ध हुआ। आत्मा की तीन शक्तियां हैं, मन को जैसा संग मिला, जिस प्रकार का वातावरण मिला, जिस प्रकार का खान पान मिला, जिस प्रकार के संग में हम रहे उसका प्रभाव पड़ता गया, और अनेक प्रकार की अशुद्धियां उसके अंदर आती गई, कुछ भी देखते हैं सोचने लगते हैं, व्यर्थ साधारण और नेगेटिव संकल्प कितना समय चलते हैं। अगर इस पर थोड़ा सा ध्यान दें कि ये अभी जो व्यर्थ है, साधारण है, नेगेटिव है, इसकी मुझे बाबा ने परहेज बताई है, परहेज कर लें। और ये परहेज इसके लिए कहा गया है, इसके लिए एक लक्ष्मण रेखा, जैसे सीता के आगे कहते हैं रावण की सेफ्टी के लिए, दुश्मन से सेफ्टी के लिए उन्होंने एक लक्ष्मण रेखा खींच दी। लेकिन ये लक्ष्मण रेखा क्या है, कोई व्यक्ति नहीं है जिसने ऐसी रेखा खींच दी, ये मन को लक्ष्य दे करके उस लक्ष्य के बाहर नहीं जाना है, लक्ष्य मन है। लक्ष्य के अंदर ईश्वरीय नियम और मर्यादाओं के अंदर उस घेरे में संकल्पों को रखना, यही सेफ्टी का साधन है। अगर हम इसको उल्लंघन कर देते हैं तो शोक वाटिका है, दुख है, शांति है। इसलिए बाबा ने हम सब के लिए मन को एक लक्ष्मण रेखा दी है, और वो लक्ष्मण रेखा है ईश्वरीय नियम और मर्यादाओं की, जिसके अंदर हमारा खान पान आता है, हमारा व्यवहारिक जीवन आता है, बहुत सारी खाने की, पहनने की, संग की बातें आती हैं, जिसकी कुछ परहेज जो हमारे ब्राह्मण जीवन की शुद्धता के लिए आवश्यक है, क्योंकि शुद्ध बनाने वाली यही सब चीजें हैं जो हम देखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, खाते पीते हैं, वो मन को अशुद्ध बना रही हैं। अगर इस पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं कि इसको हमें मन मत से, परमत से, अनेक प्रकार के विचारों से मुक्त रखना है, तो इसको बहुत अच्छे अच्छे विचार देने की आदत डालें, अच्छा संग दें। इसलिए कहते हैं सत्संग करो। जो सत्संग बाबा ने हम सबको सिखाया है वो सत कहते हैं, गॉड इज ट्रुथ, बाबा का ही संग सत्य है। अगर किसी ऐसे व्यक्ति का संग कर लिया जो व्यर्थ बोलने वाला है, व्यर्थ देखने वाला है, व्यर्थ सोचने वाला है, वो आपको व्यर्थ की तरफ लगा देगा। इसलिए इस ब्राह्मण जीवन में अपनी उन्नति करनी है तो जरूरी है हम सब बहुत ध्यान दें संग कैसा है। कमजोर का संग तो कमजोर ही बनाएगा। अगर संग अच्छा है, कोई उन्नति वाला है, प्रगति वाला है, अच्छे चिंतन करने वाला है, उसके संग में और अच्छी प्रगति होगी। संग तारे को संग डुबोए, इसलिए बहुत ध्यान देने की जरूरत है कि हम कोई भी कमजोर आत्माओं के संग में न बैठे उठे, ध्यान रखें, उसके संग का रंग न लग जाए। और साथ साथ जितने तमोगुणी पदार्थ हैं, जो खाने की आदतें बनी हुई थी, बाबा ने हमें शाकाहारी तो बना दिया, लेकिन शाकाहारी के साथ साथ बनाने वाले के विचारों का प्रभाव और किस किस प्रकार के भोजन का टेस्ट है, इंटरेस्ट है, उसको थोड़ा सा ध्यान देना, नहीं तो कर्म इंद्रियों में उत्तेजनाएं जो आती हैं वो शांत नहीं होती, कितना भी योग करते हैं। देखा यह जाता है कि अशुद्धि कर्म इंद्रियों की चंचलता के रूप में बाहर निकलती है, या सपनों के रूप में उस पर अटैक करती है, कुछ न कुछ विचार गलत आने शुरू हो जाते हैं। एक तीन स्वरूप आप देखेंगे, क्रोध के भी तीन स्वरूप हैं, उत्तेजना जो आती है उसके भी तीन स्वरूप प्रकट होते हैं। एक तो मुख से कुवचन निकल जाता, गुस्से में आकर के जोश में कुछ न कुछ बोल देते, ये भी बहुत बड़ी अशुद्धि है। ये मुख जो रतन निकालने के लिए बाबा ने दिया है, उसके द्वारा पत्थर या कंकड़ निकलने लगे, ये मुख की अशुद्धि है। व्यर्थ सोचना ये संकल्प की अशुद्धि है, और मुख से ऐसे कटु वचन बोल देना, गुस्से में आ जाना, तो एक है प्रत्यक्ष गुस्से का स्वरूप, दूसरा है जोश में आकर के अपने चेहरे को बदल लेना, लाल पीला हो जाना, तुरंत ही गुस्सा आया और एकदम चेहरा बदल गया, और तीसरा रूप है उसका बहुत सूक्ष्म चिड़चिड़ापन। आप जब से ज्ञान में आए इसको चेक करना, मैं इस पर बहुत ध्यान देता हूं प्रैक्टिकल में, क्योंकि जब संगठन में आते हैं, परिवार होते हैं और संगठन के बीच में सेवाएं होती हैं, तो आप देखेंगे कुछ न कुछ हमारे अनुसार नहीं होती, अनुकूल नहीं होती, जैसा हम चाहते हैं वैसा सब नहीं करते हैं। और जब नहीं होती है तो या तो बोल देंगे, अगर बोल नहीं देंगे तो चुप रहेंगे, अंदर अंदर चिड़चिड़े हो जाएंगे। और कईयों के पास ऐसी बातें आती हैं जो गुस्सा भी नहीं कर सकते हैं, समझते हैं तो ब्रह्मा कुमार है, तो ब्रह्म बीके है, बैज लगा हुआ है, गुस्सा तो करेगा नहीं। तो लोग और भी कई न कई प्रकार की ऐसी बातें करते हैं जो अंदर अंदर आत्मा चिड़चिड़ी हो जाती है उसे, और वो चिड़चिड़ापन अंदर अंदर परेशान करता रहता है और कहीं न कहीं वो निकल भी जाता है। चलो ऑफिस में नहीं निकला तो घर में निकल जाएगा, बच्चों में निकल जाएगा, कहीं ना कहीं गुस्सा जरूर निकलेगा। इसलिए इस बात को हम अंडरलाइन करें कि आत्मा शीतल स्वरूप है, बहुत कर्मेंद्रियां शीतल हो जाए, अंग अंग सुगंधित हो जाए। जब बदबू खत्म हो जाएगी या शुद्धि खत्म हो जाएगी तो उसकी कुछ निशानियां भी तो दिखाई देंगी ना। सबसे पहली निशानी जो उसका स्वभाव है इतना सरल हो जाएगा, शीतल हो जाएगा, जो स्वभाव से हर आत्मा समीप आने लगेगी, चुंबक बन जाएगा। आपको प्रैक्टिकल बताऊं, हमारी दादियों ने अपने स्वभाव को इतना सरल बनाया, इतना सरल बनाया, जो आज कोई भी आत्मा उनके पास जाने में हिचकती नहीं है, किनारा नहीं करती, फट से पहुंच जाती, मिलना चाहती है, देखना चाहती है, बात करना चाहती है, दृष्टि लेना चाहती है। उनका जो एक सोचने का एक बहुत पॉजिटिव रूप है वो उनके चेहरे पर, फेस पर है, और उससे उनको हर आत्मा को आकर्षण करते हैं चुंबक की तरह। उनका ओरा बड़ा अच्छा है, कभी किसी के पास सोचते ही नहीं नेगेटिव, विचार ही नहीं करते इसका ऐसा हो जाए। तो पहले एक संकल्पों से हमारा एक आभा मंडल कहें, ओरा कहें, विचारों का वो बड़ा बहुत सरल शीतल हो जाता है, स्वभाव में सरलता आ जाती है। दूसरा, बोल के अंदर इतनी मधुरता आ जाती है, जो मधुर बोल आत्मा को अपने आप खींचते हैं और सोचता है कुछ मेरे लिए बोल दें, वरदानी बोल हो जाएं। कर्म में भी जो संबंध संपर्क में आती है उनसे सुख मिलता है लोगों को, कुछ ये अच्छे कर्म से प्रेरणा मिलती है, गुणदान होने लगता है। कहने की जरूरत नहीं है आपको करना चाहिए, लेकिन अगर हम कोई ऐसे कर्म करते हैं अच्छे तो फॉलो करते हैं लोग, देखते हैं कैसे ये करते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे रहते हैं, अपने आप सीखने लगते हैं। ध्यान देना कि अगर मेरी तपस्वी जीवन है, अगर मैं बाबा को याद कर रहा हूं, उस प्यार के सागर के साथ मेरा कनेक्शन है, उसकी शक्तियां मेरे अंदर आ रही हैं, तो क्या मेरी ये स्थिति ऐसी बनी है जो हर आत्मा को प्रिय लगने लगे, कोई आत्मा किनारा न करे, कोई आत्मा रुष्ट न हो जाए, अपने आप वो आत्मा की शीतलता, उसकी मधुरता, उसकी सरलता उस आत्मा को आकर्षित करेगी, सामने वाले को आकर्षित करेगी। तो इसलिए तपस्वी जीवन के अंदर ये निशानियां प्रकट होने लगती। मुझे याद है बहुत समय तक मैं जब यहां मधुबन में आया तो डिपार्टमेंट मुझे ऐसी मिली थी जो चिड़चिड़ेपन की हो गई, माना चिड़चिड़ेपन की इसलिए कह रहा हूं, मैं जहां सोता था कमरे के साथ मेरा फोटोकॉपी ऑफिस था, जब भी कोई काम हो, अर्जेंट काम हो, फोटोकॉपी के लिए लाइन लग जाती, चाहे सोए हो चाहे जो हो। जैसे आजकल ये मोबाइल कईयों को चिड़चिड़ा बना देता है ना, ऐसे समय पर ही आता है जब वो कोई योग कर रहे हो, कोई ऐसे काम में बिजी हो जो पर्सनल हो, व्यक्तिगत हो, घंटी बज के चिड़चिड़े हो जाए, क्यों आ गया, कहां से आ गया। ऐसे उस समय में शुरू में फोटो कॉपी डिपार्टमेंट मुझे मिली, अकेला ही था मैं, कमरा साथ में दे दिया, कमरा भी साथ था, तो जब मैं सोने जाऊं, जब मैं कोई अपने पर्सनल काम में हूं, भाई जी बहुत अर्जेंट है कर दो ना, ये अभी बहुत जरूरी, अभी चाहिए, बाद में नहीं चाहिए, अभी चाहिए, चाहे वो कितनी भी रात हो या दिन हो, कोई भी समय, कोई फिक्स टाइम तो होता नहीं मधुबन के ऑफिस का। तो कुछ समय मैंने नोट किया, इससे मैं चिड़चिड़ा बनता जा रहा हूं इस डिपार्टमेंट में, अंदर अंदर सेवा है, कर रहा हूं, करके देना पड़ता है, लेकिन अंदर अंदर स्वभाव में एकदम नेगेटिविटी आती जा, चिड़चिड़ापन आ गया, सुख मिलना चाहिए लोगों को, सेवा माना, सुख देना, सुख लेना, और हम सेवा पर हैं फिर भी हम चिड़चिड़े बनते जा रहे हैं। बहुत अटेंशन देने के बाद इस चिड़चिड़ेपन को हम समाप्त कर पाए। साथी होते, मान लो आज पांच लोग आप, हम लोग पांच पांच लोग कमरे में रहते थे, अभी तो दो या तीन है साथ में। शुरू शुरू में आए तो कमरे कम थे, पांच सात आठ के बीच में रहते थे। एक का स्वभाव कुछ है, एक रात को 11 बजे आ रहा है, एक 12 बजे आ रहा है, एक 2 बजे उठ के योग कर रहा है, एक कभी नहाने जा रहा है कभी उठ रहा है, दूसरे की नींद फिटती या कोई उसकी अपनी प्रॉब्लम हो सकती है। संगठन के बीच में चलना कोई सहज थोड़ी होता, कुछ न कुछ चिड़चिड़ापन आ जाता है। बोलेंगे कुछ नहीं, कहेंगे तो सोचेंगे रिपोर्ट निकल जाएगी, लेकिन चिड़चिड़े हो जाते हैं, और वो चिड़चिड़ापन आंतरिक स्थिति को बहुत बिगाड़ता है, बहुत बड़ी अशुद्धि है वो। इसलिए बहुत ध्यान देना कि जैसे काम विकार की अशुद्धि के लिए बाबा बहुत ध्यान खिंचवाता है, मन के अंदर भी वासनाएं न रहें, विचार शुद्ध हो जाएं, किसी भी आत्मा को उसकी भ्रकुटी आसन पर देखो, शरीर को नहीं देखो, बहुत प्योरिटी के लिए बाबा की मुरलियां चलती हैं ब्रह्मचर्य की पालना के लिए। लेकिन साथ साथ इसका जो दूसरा साथी है, जैसे सन्यासी लोग ब्रह्मचर्य का पालन कर लेते हैं, घर बार छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन दूसरा अगर देखो तो बहुत तेज उभरता है, गुस्सा बहुत आ जाता है। हम सबको भी बाबा कहता, बच्चे इन पांचों विकारों को जीतने वाला ही पवित्र है, शुद्ध है। अगर एक भी विकार किसी रूप में, पहला सताता है, दूसरा जलाता है, तीसरा भटकाता है, लोभ भटकाता है, इधर जाऊं उधर जाऊं, ये कमाऊं, और मोह फंसा देता है एक दूसरे के अंदर, और अगर थोड़ा कहीं बुद्धि का करने का अभिमान आ गया, अहंकार आ गया, तो उल्टा ही लटका देता है, मेरे जैसा कोई नहीं। ये पांचों अशुद्धियां हरेक के अंदर सूक्ष्म रूप में, भले ऊपर से हमने त्याग दिया, लेकिन कहीं न कहीं सूक्ष्म रूप में जरूर है, और उन अशुद्धियों को समाप्त करने के लिए हमारी तपस्या है। सिर्फ हम योग भट्टी करके जाएं, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, बहुत अच्छी क्लास मिली, बहुत अच्छा वातावरण था, लेकिन ये जरूर चेक करना लास्ट में, मेरे जो पास्ट की लाइफ थी अभी तक की, अभी भट्टी के बाद या तपस्या करने के बाद, वो कितनी शुद्ध हुई है, कितने विचार शुद्ध हुए हैं, वाणी शुद्ध हुई है, अंदर की स्थिति शुद्ध हुई है, कितनी उसके अंदर शुद्धता आई है, प्योरिटी कितनी आ गई, निर्मलता कितनी आ गई, अंग अंग सुगंधित हो जाए, शीतल हो जाए, एक एक कर्मेंद्रिय। जरूरत तो उसकी है, उसके लिए तो तपस्या करते हैं, उसके लिए तो समय निकालते हैं। गहन तपस्या के लिए तीन चीजों पर सिर्फ ध्यान देना। एक, बाबा कहता है बच्चे जितना हो सके एकांत में रहो। अब एकांत का मतलब निर्जन स्थान नहीं, निर्जन स्थान पर चले जाओ जहां जन लोग कोई हो ही नहीं, उसको बाबा एकांत नहीं कहता है, सबके बीच में रहो, लेकिन एक के अंत में आत्मा खोई रहे, एक से बातें होती रहे, एक से एक को ही देखता रहो। गीता ना, बाबा तुझे ही देखता रहो, तो अंदर ही अंदर एकांत में चले जाओ। इस देह में है, देख रहे हैं, बात कर रहे हैं, लेकिन उपराम हो गए, ऊपर चले गए, राम के पास ऊपर चले गए, बाबा को देख रहे हैं, बाबा से बात कर रहे हैं, उसी से रूहरियान हो रही है, एकांतवासी। आप कहीं पर भी रहो, किसी के बीच में भी रहो, बीच बीच में प्रैक्टिस करो, बाबा से मिल के आ गए, एक सेकंड लगता है बाबा के पास जाने में, टाइम नहीं लगता है, कोई को पता भी नहीं चलेगा बाबा के पास चला गया, ये दिल करते रहो। तो एकांतवासी तपस्या के लिए स्थान जरूरी है, और दूसरी एकाग्रता है। जहां जहां भी मन बुद्धि जाती है, मन को दमन नहीं करना, मारना नहीं है, उसको देखो सिर्फ। जब एकांत में बैठो ना, मैं जब योग में बैठता हूं ऐसे ऐसे छोड़ देता हूं शरीर को, जैसे ये छोड़ दिया यहां, और भ्रकुटी आसन पर बैठ गए, अनुभव करें ये अलग है मैं अलग हूं, चिंतन भी है, नहीं ऐसे नहीं अलग हो गए जाके, चिंतन है ये। और चिंतन करते 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 जब आत्मा अपने गुफा में बैठ गई तो देखती है संकल्प कहाँ जा रहा है, मन कहाँ जा रहा है, जहां पर स्नेह होगा, जहां पर कोई कनेक्शन होगा, जहां कोई लगाव होगा, झुकाव होगा, किसी का प्रभाव होगा, कोई ने मदद की होगी, कोई से दुश्मनी हो गई होगी, कहीं घृणा होगी, कहीं नफरत होगी, वहीं पड़ जाएगा, कहां जाएगा। चेक किया है कभी? मैं समझता हूं सभी ने किया होगा क्योंकि ये तो सबके साथ है। जब आप योग में बैठेंगे उसकी गति को सिर्फ देखो, किधर जाता है, कौन देखेगा? आत्मा ही अपने दिव्य नेत्र से देखेगी, बुद्धि के नेत्र से देखेगी कि संकल्प किस किस भाव में जा रहा है। और फिर एक प्रश्न पूछ लो, क्यों जा रहा है, किधर जा रहा है, क्यों जा रहा है, क्या चाहिए। और फिर उसको अपने ही शुद्ध संकल्प से, उसी संकल्प से कि देखो आज बाबा से मिलने का समय है, प्रभु मिलन के लिए हम बैठे हैं, इसके लिए हमने समय निकाला, इतने बिजी होते हुए भी आपको यहां लेके आए, और फिर भी भटक रहे हो, बात करो उससे। इसको कहते रूह रिहान। ऐसे बात करते करते वो मन अपने आप आपके कंट्रोल में आ जाएगा, यही वाहन है। कल परसों वरदान में था ना, मन के वाहन से, कल की मुरली में ही था, वरदान में नहीं, बाबा ने कहा अंतर्वाहक शरीर से जैसे आत्मा पहुंचती है, ऐसे संकल्प शक्ति से किसी भी आत्मा को तुम मदद कर सकते हो, दुखी आत्मा के दुख दूर कर सकते हो, बाबा का संदेश दे सकते हो। ये मन एक बहुत बड़ी शक्ति है, और इस शक्ति पर अगर हमारा नियंत्रण आ गया, कंट्रोल आ गया, तो एकदम तीनों लोकों की यात्रा करो। योग और क्या है, तपस्या और हमारी क्या है, ये साकार वतन से उड़े, अपने अव्यक्त वतन में, फरिश्तों की दुनिया में बाबा के पास पहुंचे, सूक्ष्म वतन में बाबा की स्नेह की दृष्टि ली, शक्ति ली, मिलन मनाया, रू रिहान की, और फिर उस सूक्ष्म वतन से लाइट के शरीर को छोड़ा, अपने मूल वतन में बाबा के पास अव्यक्त वतन में बैठ गए। यह अभ्यास है ना, साकारी, आकारी, निराकारी, यही तीन स्थितियां। बाकी करो, बहुत वैरायटी है, बहुत ज्ञान तो बहुत वैरायटी मिला है, बाबा ने दिया है, कमेंट्री कराते हैं तो कितनी सारी बातें आती हैं योग में, लेकिन अभ्यास यही तीन है तपस्या के। और इसके लिए आवश्यकता है एकाग्रता की, एकांत की, और एकव्रतता की। एकव्रतता, एक ही से सब संबंधों का प्यार, लौलीन स्थिति, एक के सिवाय और कोई संसार में मेरा नहीं है। जब एक से इतना दिल का प्यार होगा, जिगरी प्यार होगा, तो अपने आप बुद्धि और कहीं नहीं जाएगी, भटकना बंद कर देगी, बहुत भटकती रही है। देखना अशुद्धि क्या ही है, किसी के गुण देखेगी, बहुत अच्छा व्यक्ति है, उस पर प्रभावित हो जाएगी, बहुत अच्छा है, इसकी वाणी कितनी अच्छी है, इसका बोलचाल, इसका व्यवहार कितना अच्छा है, ये तो सबका सहयोगी है, ये तो ये संसार में एकदम देव आत्मा है, महान आत्मा है। बस प्रभावित हुई तो उसके पीछे पीछे लग जाएगी, भले वो कैसा व्यक्ति, अंदर क्या है, बाहर क्या है, पता न चले। बुद्धि का काम है भटकना, भटकती है, एक के पास जाएगी, दूसरे के पास चले, तीसरे के पास चले जाएगी। तो अशुद्धि ये आई है कि वो फट से प्रभावित हो जाती, और थोड़ी सी बात मन पसंद नहीं हुई तो उससे नफरत कर लेती, घृणा कर लेती, उसको देखना नहीं चाहती, उससे मिलना नहीं चाहती। ये बुद्धि गुणग्राही जरूर रहे, विशेषताएं देखने की नजर तो जरूर रहे, क्योंकि विशेष आत्मा बनना है तो हर एक की विशेषता तो देखनी पड़ेगी, लेकिन किसी से प्रभावित न हो। जो भी विशेषताएं यदि किसी आत्मा में है, वो प्रभु देन है, और वो प्रभु देन जो इसको मिली है मुझे भी मिल जाए, जरूर रेस करना है। मेरे अंदर भी वो विशेषताएं आ सकती हैं, कैसे आई, उसके अंदर सच्चाई के आधार से आई है, बहुत आनेस्टी के आधार से आई है, वो बाबा के ऊपर फिदा हुआ, बाबा को एक अपना संसार बनाया, इसलिए उसके अंदर विशेषताएं आ गई। हम भी ऐसे बन जाएंगे तो हमारे अंदर भी वो सब आ जाएंगे। बाबा तो सबको एक जैसा वर्षा देता है ना, अलग अलग देता है, अगर उसको वर्षा मिल गया है तो मुझे भी मिल सकता है। हम भी रेस करें इसके लिए, रेस नहीं को, इसके पास ऐसा है तो मेरे अंदर हो जाए, ऐसा नहीं है, लेकिन रेस जरूर करो। तो जितना गुणग्राही बुद्धि बनती जाएगी, जितना एक के ऊपर प्रभावित होगी, एक से जिसका प्यार हो जाएगा, एक व्रत्ता कहलाएगी, उसका सहज योग सहज तपस्वी जीवन बन जाएगा। तो तपस्या के लिए कहीं भी इधर उधर संकल्प नहीं रचना कि ऐसे बैठ जाऊं मैं 8 घंटा 6 घंटा। कई लोग हटक्रियाएं ऐसे करते हैं, बाबा के बच्चे बनने के बाद भी बैलेंस खो देते हैं। और ये बहुत जरूरी है इस ब्राह्मण जीवन में अंडरलाइन करना, बैलेंस टूटना नहीं चाहिए। बैलेंस से ही ब्लेसिंग्स मिलती हैं, ब्लिसफुल लाइफ का अनुभव होता है। अगर सचमुच आनंदमय जीवन व्यतीत करनी है तो कर्म और योग का बैलेंस है, परमार्थ और व्यवहार का बैलेंस है, न्यारा और प्यारा का बैलेंस है। बैलेंस रखो, अति प्यारे बन गए, सबके प्यारे हैं ठीक है, न्यारा रहना आता है, नहीं तो प्यार कहीं ना कहीं फंसा देगा। जितना हम सबके प्यारे हैं उतना देह से तो न्यारे रहे, न्यारे रहना देह अभिमान से, देह भान से, और जब देह भान से न्यारे रहेंगे तो नेचुरल सबका प्यार मिलने लगेगा, बाबा भी बहुत प्यार करेगा। परमार्थ के लिए बाबा ने कहा बच्चे समय दो, सेवा करो, बाबा का संदेश दो, हम लग जाए इसी में ही, व्यवहार छूट जाए, लोग क्या कहेंगे, सेवा होगी, बैलेंस। जैसे आप लौकिक के ऊपर ध्यान देते हो वैसे अलौकिक पर दो, अलौकिक पर जितना दे रहे हो उतना दो, लौकिक का भी ध्यान रखो। अगर बैलेंस चलेंगे तो सब कहेंगे दिन की जैसी लाइफ तो कोई की नहीं है, कितना निश्चिंत रहते हैं, सेवा होने लगेगी। तो जो बैलेंस से चलता है उसको ब्लेसिंग्स मिलती हैं, और योग में ब्लेसिंग बहुत मदद करते, दुआएं बहुत मदद करते। आप इस जीवन में देखेंगे अगर किसी को सुख पहुंचाया है, समय पर साथ दिया है, बहुत मदद की है, तो उसके जो प्यार की दुआएं हैं वो जब आप योग में बैठोगे आपको इतना सुकून सुख का अनुभव कराएंगे, आपका फट से योग लग जाएगा, बुद्धि का भटकना बंद हो जाएगा। और अगर कोई किसी कारण से डिस्टर्ब हो गया होगा, नाराज हो गया होगा, उसके अंदर कोई ऐसी फीलिंग आ गई होगी मेरे प्रति, तो वो भी बार बार उसके संकल्प हमारे योग को तोड़ते रहेंगे, तपस्या नहीं करने देंगे, बिघन डालेंगे। इसलिए इस जीवन के अंदर कुछ ऐसी धारणाएं, ऐसे नियम अगर हम पालन करते हैं, सहज योगी जीवन बन जाती है और गहन तपस्या की ओर ले जाती है। गहन तपस्या के नाम से आप ऐसे नहीं समझना कि हम कोई 6 घंटा 8 घंटा बैठ करके तपस्या करें। बैठ करके बाबा इसलिए कराता है कि जिससे प्रैक्टिस हो जाए, आपका योग निरंतर बन जाए। ऐसा अभ्यास कर लो 4 घंटा 2 घंटा जितना बैठ के कर सकते हो करो। लेकिन कर्म योगी जीवन है, कर्म के अंदर व्यवहारिक जीवन में रह करके प्रैक्टिस करो कि मैं आत्मा इस देह से न्यारी हूं, देह से अलग हूं, इन कर्म इंद्रियों की मालिक हूं। किसी भी प्रकार से मन के ऊपर, मन मत पर मत किसी का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। श्रीमत क्या कहती है, इसलिए बाबा की मुरली ही श्रीमत है और कोई दूसरी मत को श्रीमत नहीं कहते। मुरली के अंदर जिस दिन कोई बात आपके मन में उलझन पैदा करे उसी दिन की मुरली आप उठा के पढ़ो। हो सकता है आपके मन की गति को बाबा जानता हो और आपको उसका जवाब दे दे उसी दिन की मुरली में। उलझने की जरूरत नहीं, भटकने की जरूरत नहीं। सत्य वचन महाराज, बाबा के महावाक्य बहुत सत्य हैं। और अगर जवाब नहीं मिलता तो एक विधि और भी लोगों ने अपनाई, मैंने देखी है प्रैक्टिकल, वही बात लिख करके बाबा के आगे रखते हैं। दो बातें आती हैं मन के अंदर, ये होना चाहिए ये नहीं होना चाहिए, और वो दो बातें ही बाबा के आगे लिख दी और फिर वही पर्ची उठा ली। अगर संपूर्ण निश्चय होता है तो वही जवाब मिल जाता है जो होना है, जो करना है, नहीं करना तो नहीं। इतना बाबा में विश्वास रख करके मन को उलझने मत दो। मन जितना सरल शीतल बन जाएगा उतना मन मना भाव बाबा में टिक जाएगा, लग जाएगा, ये जीवन तपस्वी जीवन बन जाएगी। कर्मेंद्रियों को तपाना है, कोई भी कर्मेंद्रिय समय पर धोखा न दे, किसी भी प्रकार से धोखा न मिले। तो संकल्प शक्ति पर ध्यान है, बुद्धि पर ध्यान है, और जो छिपे हुए संस्कार हैं, अच्छे संग से, अच्छे वातावरण से, अच्छे भोजन से, वो संस्कार दब जाते हैं, जो नेगेटिव हैं, बैठते हैं, अशुद्ध हैं। लेकिन जब ऐसा कोई समय आता है, जब कोई ऐसी बात बनती है, उस समय वो संस्कार बाहर आ जाता है। फिर सोचते हैं, अरे ये कहां से आ गया, मैंने तो कभी सोचा नहीं था। उस संस्कार को संस्कार करना है, जलाना है, उसके लिए तपस्या चाहिए। बहुत दृढ़ता का संकल्प करो, वो तपस्या है कि कुछ भी घटना घटे, लेकिन मैं अपने आप को इन विकारों के अधीन नहीं होने दूंगा, इनकी अधीनता समाप्त हो जाए। कभी कभी चेक करना चाहिए, कोई भी प्रकार का नेगेटिव संस्कार मेरा बाहर तो नहीं आता। ऐसी परिस्थिति आ गई तो, मान लो किसी के सामने ऐसी परिस्थिति आती है, हम कहते हैं हमने मोह को जीता है, हम मोह जीते हैं, काम जीते हैं, क्रोध जीते हैं, लेकिन जब घटना घटती है, हम देखते हैं उस व्यक्ति के आगे कोई बात आई, कितने समय से योग कर रहा था, फट से उसके ऊपर पेपर आ गया, और पेपर आ गया तो उसका हाल खराब। ज्ञान है, समझ है, दूसरों को भी देता है, लेकिन जब उसके सामने वो पेपर आया, वो पजल हो गया बेचारा, घबरा गया, सोच भी नहीं सकता मेरे आगे भी आएगा क्या है। मैं एक घटना सुनाता हूं। हमारे बहुत नजदीक एक शहर है, नजदीक मधुबन से, बहुत अनन्य परिवार जिसकी चार बच्चियां समर्पित है। एक ही बच्चा था और युगल, वो साथ में रहते थे, पेट्रोल पंप की दुकान, पेट्रोल पंप था, और भी कई बिजनेस था। चार बच्चियां समर्पित, एक बेटा, वो 16 साल का था, 16-17 साल का। एक दिन पहले बहुत अच्छा भट्टी का क्लास कराया उस भाई ने, अनन्य भाई है, पुराना भाई है, और भट्टी का क्लास कराया, नष्टो मोहा, स्थिति क्या होती है, बहुत अच्छा क्लास कराया। दूसरे दिन वो पेट्रोल पंप पर बेटा बैठा था, अचानक उसको भूख लगी होगी, ख्याल आया खाना खाने का समय हो गया, मैं जाऊं। अपनी गाड़ी थी, कार थी, बाइक भी नहीं थी। उसने कार उठाई और स्पीड में घर जा रहा था। आगे ट्रक था, उसको पता ही नहीं चला, उस ट्रक के अंदर चली गई गाड़ी, और ट्रक के अंदर गई तो उसी समय ऑन स्पॉट उसी समय उसने सर छोड़ दिया। पीछे से उसके दोस्त लोग दूसरे भी आ रहे थे, उन्होंने देखा ऐसा क्या हो गया, फिर रोका, देखा तो एक बहुत बड़ा हादसा था। उसके पिताजी को पता चला, वो क्लास तो कराया था, ज्ञान बहुत था, अच्छी स्थिति में था, लेकिन सुनते ही वो एकदम गुम हो गया, बोला कुछ नहीं, रोया भी नहीं, लेकिन एकदम गुमसुम हो गया, और सारे परिवार को डायरिया हो गई, एकदम चिंता, एकदम ऐसा जैसे पेपर आया। एक ही बेटा, एक ही संभालने वाला परिवार के अंदर वो ऐसे चला जाए, कभी सोच भी नहीं सकते। और कलयुग के अंत में ऐसे ऐसे बहुत गहरे बड़े पेपर आते हैं, अचानक आते हैं, आत्मा उस समय हिल जाती है, ज्ञान पूरा हो जाता है, वो संस्कार का बाद में पता चलता है। कोई पेपर जब आता है ना तो पता चलता है, अरे ऐसा था मेरा, अभी बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो जो उस घड़ी की घटना थी वो घटना हिला गई। बाद में तो उन्होंने अपनी स्थिति बहुत अच्छी बना ली, परिवार की सेवा की, सबकी सेवा की, वो आत्मा को जरूरत थी, नई दुनिया की स्थापना के लिए गई, एडवांस पार्टी में, ज्ञान सब ही मर जाए, लेकिन कुछ घड़ी का वो पेपर उस आत्मा को ऐसा हिला के गया जो एकदम सब बीमार हो गए। कहने का भाव है कि कई ऐसी बातें सूक्ष्म रूप में आत्मा के अंदर हैं। हम लोगों ने पार्ट बजाया ना इतने समय एक दूसरे के साथ, हमने अपना समझ लिया है, मेरापन आ गया है, और उस मेरेपन को हम मैला नहीं समझते, अशुद्धि नहीं समझते, समझते होगा ना, परिवार है, थोड़ा तो अटैचमेंट रहेगी ना, थोड़ा तो कुछ होगा, लेकिन वो थोड़ा भी मैलापन अंदर है, मेरापन, मैलापन उसको मैं कह रहा हूं, उस मेरेपन के सूक्ष्म लगाव को चेक करना है। न इस देह में है, न इन कर्मेंद्रियों में है, न साधनों में है, न संबंधों में है। अगर कहीं पर भी बुद्धि अटकी हुई है और वही पेपर किसी के सामने आ गया तो क्या वो पास हो जाएगा? है ऐसी तपस्वी जीवन, कोई भी बात आए बाबा के पास चले जाएं और बाबा उसका हल दे दे। बाबा सबको शक्ति देता है, मदद करता है, लेकिन हिसाब किताब चुक तू करने में बाबा कुछ नहीं करता। ऐसा नहीं भगवान को दोष दे ऐसा क्यों कर दिया, बाबा को रक्षा करनी चाहिए, बाबा को मदद करनी चाहिए, और बाबा को तो ये लगता ही नहीं है कि इसमें रक्षा और मदद की कोई जरूरत है। वो जानता है तो इस आत्मा का पार्ट था, यहां पूरा हो गया, दूसरी जगह जाएगा। बाबा तो त्रिकालदर्शी है, उस आत्मा के तीनों कालों को जानता है, इसलिए बाबा निश्चिंत है, मुस्कुरा देता है और बच्चे थोड़ी बात में हलचल में आ जाते हैं। उनको लगता है मेरा चला गया, सब छिन गया, सब कुछ हो गया। तो कोई भी ऐसे सूक्ष्म संस्कार कलयुग के अंदर बंधन के रूप में, मेरेपन के रूप में, मैंपन के रूप में अशुद्धियां आत्मा के अंदर अगर हैं तो उनको चेक करो, सूक्ष्म संस्कारों को चेक करो और बहुत अच्छी तपस्या करके दृढ़ता संपन्न संकल्प करके एक बाबा दूसरा न कोई इस स्थिति के आधार से अपने आप को एकदम न्यारा प्यारा खुशनुमा बना दो। ठीक है, तपस्या का अर्थ तो यही है कि हमारे पुराने संस्कार जो भी हैं वो अंश मात्र भी न रहें, समाप्त हो जाएं, और उसके लिए बीच बीच में चेकिंग बहुत जरूरी चाहिए। चेक करोगे तो चेंज कर लो, नहीं चेक करोगे तो वो चलते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। तो ऐसी तपस्या करके बहुत शुद्ध पवित्र योगी बन करके, शीतल काया वाले योगी, चिड़चिड़ापन हो तो भी समाप्त हो जाए, सूक्ष्म वासनाएं हों, तृष्णाएं हों, कामनाएं हों, चेक करना पड़ेगा ना, ये अशुद्धियां है ना अंदर, बहुत महीनता से चेक करना। फिर गहन तपस्या माना ऐसी एकाग्रता की तपस्या करो जो किरणें पड़े, जैसे आजकल ऑपरेशन कैसे करते हैं, बहुत चीर फाड़ नहीं करते हैं, लेजर किरणों से कर देते हैं, लेजर किरणें डालेंगे और चीर फाड़ नहीं करेंगे, ऐसे अंदर अंदर गला देंगे, पथरी को गला देते हैं, कई ऑपरेशन ऐसे कर देते हैं जिसमें कुछ भी फाड़ते चीरते नहीं है। तो बाबा कहता है बाबा के ज्ञान सूर्य की किरणें ऐसे लो और उस संस्कार को गला दो, जला दो, लेकिन एकाग्रता चाहिए, ऐसे नहीं हिल जाए हाथ, डॉक्टर का हाथ अगर हिल जाए तो क्या होगा, नुकसान कर देगा। तो बहुत ध्यान रखना कि इतनी एकाग्र चित्त स्थिति से एक बाबा दूसरा न कोई, उसको देखो, उसके अनुभव करो, उसकी शक्तियों को ग्रहण करो, वही लेजर किरणें आत्मा के पुराने अशुद्ध संस्कारों को समाप्त करेंगे। ठीक है, तो ऐसे शुद्धता के लिए तपस्या कर, गहन तपस्या, एक बाबा दूसरा न कोई, एक टिक स्थिति, एक रस स्थिति, और उसके लिए बहुत अच्छा आसन है भ्रकुटी, बैठ जाओ गुफा में, बैठे हो अभी, बैठ सकते हो, सब बैठ जाओ अपने अपने आसन पर, देखें 5 मिनट के लिए, कोई संकल्प न चले किसी के, सब संकल्प एक बाबा में समा जाए, मैं और मेरा बाबा, बस मैं बाबा का, बाबा मेरा, उस लाइट माइट स्वरूप को देखो, अपने स्वरूप को देखो और बाबा के स्वरूप को देखो, और उसके शांति की, प्यार की, सुख की किरणों को अपने ऊपर अनुभव करो।
एकांत, एकाग्रता और एकव्रता स्थिति और अनेक आत्माओं की आशीर्वाद, दुआएं, वो गहन तपस्या के फाउंडेशन है। बहुत ही सरल और सहज भाषा में भाई जी ने गहन तपस्या कैसे करनी है, क्या उसके परिणाम हैं, क्या उनकी प्राप्तियां हैं, वो हम सभी के सामने स्पष्ट किया। हम भाई जी को विश्वास दिलाते हैं कि 2-3 दिन की यहाँ की यह साधना में ये अच्छे ही संस्कार पक्के करके जाएंगे, ठीक है ना? बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, धन्यवाद करते हैं।